श्रीरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमन्वेतमपेतकृत्य वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वयादि इति ते नय राधे तं नय मां चरणन्ति ते। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के सुगोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरणों में भी दंडत प्रण की ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात वैष्णवगण उपस्थित सज्जनगण मेरे भाइयों मेरे बहनों और मेरी पुत्रियां सबको यथायोग्य सम अभिनंदन करते हुए मैं कथा आरंभ करता हूँ। आज वैसे तो दुर्दिन मालूम पड़ता है, वर्षा घनाघोर हो रही है, चार तरफ में पानी हो रहा है, किंतु यह दुर्दिन नहीं है। दुर्दिन वह है जब भगवान की कथा न हो, जब साधुओं का प्रसंग सत्संग न हो, भगवान का नाम स्मरण न हो, वो सबसे बड़ा दुर्दिन है। हम तो समझते थे बहुत कम श्रोता दस पांच आएंगे, किंतु मुझे बहुत उल्लास है कि इतने श्रोता लोग आए हैं। मैं आप लोगों का सबका विशेष करके हमारे क्या नाम हमारे सरजू प्रसाद जी के कांति भाई जी के और सब लोगों का आभारी हूँ जो वर्षा में भी चारों तरफ में घूम घाम कर लोगों को यह संदेश दिया हरि कथा बंद नहीं रहेगी, हरि कथा होगी। तो यदि आप लोग नहीं भी रहते तो हम तो अपना जरूर अपने आप ही सत्संग करता। मेरी सत्संग हरि कथा बंद नहीं होती। तो कल हम लोगों का प्रसंग चल रहा था भगवान के रूप के संबंध में, जो भगवान कभी भी निराकार नहीं है, कभी भी अरूप नहीं है, कभी भी निर्गुण नहीं है। निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि गुणों से अतीत है। निराकार इसलिए कहते हैं कि वो समस्त जागतिक रूपों से सतरज तम के इस पार्थिव आकार से ऊपर है, किंतु उनका सच्चिदानंद रूप है, बहुत अद्भुत उनके गुण हैं, समस्त गुणों के आधार हैं, साथ ही साथ में निर्गुण होने पर भी साथ ही साथ सगुण भी हैं। रामायण में, गीता में, भागवत में, वेदांत इत्यादि में सर्वत्र यह कहा गया। इसलिए उसे आगे की कथा कुछ आरंभ करता हूं। यूं तो लीला कथाएं बहुत से कथावाचक आते हैं, सुनाते हैं। लीला कथा भी हम सुनाएंगे कुछ कुछ, किंतु उन लीलाओं कथाओं में क्या सिद्धांत हैं, जब तक आप लोग सिद्धांत नहीं जानेंगे तब तक श्री राम के या कृष्ण के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। संदेह में दुर्दल्यमान होते रहेंगे। हमारी और आपकी तो विषात ही क्या है, गरुड़ जी जैसे भगवान के नित्य वैकुंठ के वाहन, उनको भी मोह हो गया। नारद जी मुक्त महापुरुष हैं तो भी उनको मोह हो गया इस विषय में। यहां तक कि काकभूषुंडी जी को मोह हो गया था, वो भी उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस विषय में कहते हुए हम लोग भगवान का गुणानुवाद भी करेंगे, उनकी लीलाओं का कुछ वर्णन भी करेंगे प्रसंग वर्षक। पहले ये मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, तीन शब्द बतलाएंगे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म को निराकार भी कहा गया है, वो हमारे परब्रह्म की, भगवान के चरण नख की ज्योति स्वरूप हैं। इसलिए ज्योति में आकार नहीं होता है, इसलिए उनको निराकार कहीं कह दिया गया है। किंतु परब्रह्म जो राम या कृष्ण हैं, इनको भगवान कहते हैं। सोई सच्चिदानंद घन श्याम घन रामा अज विज्ञान ज्ञान बलधा, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। पहले मैं ये बतलाऊं, ब्रह्म कहते हैं भगवान की अंगों से निकली हुई ज्योति को, जो ज्ञान के द्वारा, उपासना के द्वारा देखे जाते हैं। परमात्मा उसको कहते हैं जो योग के द्वारा हृदय में भगवान का हुआ अंश, जो सर्वव्यापी है, अंगुष्ठ परिमाण है, जिसमें सत और चित है, आनंद नहीं है। ब्रह्म में सत भी नहीं है, केवल मात्र चित का आंशिक प्रतिफलन मात्र है। और भगवान में सारे गुण, रूप, सब कुछ होंगे, इसलिए उनको भगवान कहा गया। भगवान शब्द की व्युत्पत्तिगत जब हम अर्थ लेते हैं, भगवान गाड़ीवान, गुणवान, रूपवान, पहलवान, वान माने युक्त, गाड़ीवान जो गाड़ी चलाता है, गाड़ी से युक्त है, उसको गाड़ीवान कहते हैं। पहलवान जो दंगल कुश्ती में पहल करता है, कुश्तियों को, दाव पेश को, उसको पहलवान कहते हैं। रूपमान जिसको रूप है उसको रूपवान कहते हैं। वैसे भगवान अब लगा लीजिए, जिनके भग से युक्त हैं। भग माने क्या, भग माने होता है गुण। भगवान में षड् गुण है, षड् भग है, ऐश्वर्यस्य विजयस्य जसस विजस्य ज्ञान वैराग्य चैव सन्ना भव इति मना, ऐश्वर्य समग्र। भगवान में सारे प्रकार के ऐश्वर्य हैं, अघटन पटीयसी शक्ति वाले, अघटन घटन, जो नहीं हो सकता है उसको भी क्षण मात्र में कर देंगे, ऐसे ऐसे विश्व का एक क्षण में ध्वंस कर देंगे, और कोटि कोटि ऐसे विश्व को एक क्षण के अंदर में पलक झपते ही कर देंगे। ये किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं, इसलिए जो मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है, अघटन घटन जो घट नहीं सकता उसको भी कर देते हैं। ऐसे को ऐश्वर्य कहते हैं। वीर्य बलवान है, जस समग्र जस जिनमें परिपूर्ण रूप से है, ज्ञान है जिसमें, जिसमें सारा विज्ञान है, और जो रूप के आधार है, ये छह भव कहलाते हैं। इसकी व्याख्या करने से बहुत समय चला जाएगा, अब केवल दो दिन हम लोग को रहना है, इसे थोड़ा सा संक्षेप में बतलाते हुए चल रहा है। तो इन छह प्रकार के भवों से जो युक्त हैं उनको भगवान का, और भगवान भव माने अखिल विश्व के जो ब्रह्मांड के भर्ता हैं, भर्ता माने पालन पोषण करता है, ये भव अखिल विश्व ब्रह्मांड के जो जीवों के भरण पोषण करता है वो भव, गौ माने गमयिता नेता संचालक, विश्व ब्रह्मांड का जो संचालन करता है, समुद्र में लहरी सब समय ठीक समय पर आता है, पृथ्वी ठीक समय पर बदलती है, सूरज ठीक समय पर एक मिनट पहले 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 फिर पीछे पीछे ठीक, ये सब कंट्रोल वही करते हैं, अपने कर्मों का फल हमारे जो है वो सब दे करके जैसे तैसे सब संचालन करते हैं। हिटलर चाहता तो बम से उड़ा देता, नहीं उड़ा सका, अपने ही ढंग से हो गया। ऐसे ही सब ये भ ग वा अखिल प्राणी जिसमें वास करते हैं, अखिल प्राणी जिसमें वास करते हैं, ये हुआ वा का, ऐसे जो हैं ये भगवान हैं। इसलिए भगवान एक निराकार निर्गुण निशेष ऐसे नहीं, ऐसे ये सब गुणों के जो आधार हैं वो तो हुए भगवान। इधर ये जीव को देखिए, राम कृष्ण इत्यादि यही भगवान हैं, इनमें ये जो बातें कही वो सब मनुष्य में जीव में ये बातें नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसका अर्थ मैंने कल किया था, यह भगवान का अंश है और अविनाशी है, किंतु होने पर भी सो माया बस भयो गोसाई यथा कीच मरकट की ना बधो कीच मरकट की नाई। क्या तात्पर्य, सो माया बस भयो गोसाई, देखिए माया कहने से कोई एक चीज मत समझिए, माया दो प्रकार की, सो दासी रघुवीर थी समुझे सो मिथ्या सोही, ये जो माया है ये भगवान की शक्ति है, इसी को जोग माया या महामाया, उसकी छाया को महामाया कहते हैं। भगवान से जो शक्ति जो कराती है उसको जोग माया कहते हैं, और ये संसार रच करके और उसमें मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस किन्हीं जीव निकाया। सोदासी रघुवीर की ये जो माया है वो कौन, शंभु संग अर्धंग निवासी, शंभु के साथ में जो रहने वाली हैं ये महामाया है, दुर्गा जी हैं, और रामचंद्र के से जो बाम में जो रहती हैं आदिशक्ति, वो आदिशक्ति हैं सीता जी, जोग माया उनका एक प्रकाश मात्र है, वो सब समय राम के साथ में रहती हैं, कृष्ण के साथ में राधा जी रहती हैं, ये पराशक्ति है, पराशक्ति विविध्रैव श्रूयते, यही पराशक्ति विविध रूप में भगवान के इच्छानुसार में कार्य करती है, उसके नाना प्रकार से कार्य होती है। जब चेतन जगत में वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन में जो चीजों को प्रकाशित करते हुए सच्चिदानंदमय वस्तु होते हैं, वहां पर कोई बंधन नहीं होता, वहां पर ये महामाया नहीं, वहां पर बधे हुए जीव नहीं है, हम जैसे जीव नहीं है, वहां पर नित्य मुक्त जीव उनकी सेवा करते हैं, वहां पर भगवान को भूलने का कोई चांस नहीं। किंतु जो लोग हमारे जैसे हैं भगवान को भूल जाते हैं, उस जगत में नहीं इसी जगत में जो भूल जाते हैं, उनके लिए ये महामाया, जोग माया नहीं महामाया, जो जोग माया की छाया है वो इस जगत का सृजन करती है। ये तो सत्य है, किंतु उस माया के कारण में ये शरीर में जो मैं और मोर तोर तय, ये माया है, ये मिथ्या है। समझे मिथ्या सोफी, जो रघुवार की दासी है वो मिथ्या नहीं है, और उनका बनाया है वह ये विश्व भी मिथ्या नहीं है, जगत सत्य है। जो लोग यह कहते हैं कि जगत मिथ्या है वो मिथ्या है, जगत परम सत्य है किंतु नश्वर है, और वह जगत वो नित्य सत्य है, वैकुंठ जगत। इसलिए इस महामाया का बनाया हुआ रचित जो जगत है, सत्य होने पर भी इसमें जो मैं और मोर या शरीर मैं हूं और मेरा ये मेरी स्त्री है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, ये मेरी जमीन है, जायदाद है, ये कुत्ता है, जानवर है, बगीचा है, यह धन संपत्ति मेरी है, ये क्या है? मिथ्या। ये माया का दो रूप हुआ, ये मिथ्या है, ये हमारा स्वरूप का है, मैं और मैं मेरा है। मैं क्या हूं? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह अभिमान जाई जनु भोरे। ये नित्य अभिमान है, ये कभी नहीं मैं और मेरा, कृष्ण ही मेरे हैं, मैं उनका दास हूं, सचराचर उनका दास है। इसलिए सुतृष्ठ जी कहते हैं कि यह अभिमान हो मैं कभी भी न भूल सकूं कि मैं सेवक रघुपति पति हूं। सेवक से भाव बिनु भवन तरह ही उर्गा, और वहां पर से नित्य उनकी सेवा करता है। ये मिथ्या नहीं है, ये माया नहीं है, यह है सत्य रूप में। किंतु इस जगत में आने के बाद में मैं और मेरा है, यही माया है। इसी से मुक्त होने पर उसको कहते हैं मुक्त पुरुष। इसलिए कोई कोई ये समझते हैं कि मुक्ति हो जाने पर अभी हम लोग बद्ध हैं, किंतु मुक्त होने पर हम शिव हो जाएंगे, शिव हम। कोई कहते हैं ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मुक्त होने पर मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, मैं मिल करके उनमें एक हो जाऊंगा, एक ही हूं। अज्ञान से हम दिखते हैं भेद, मुधा भेद, उसी जने का कुछ मायावादी ऐसा समझते हैं। यह भेद भगवान में और जीव में जो भेद है ये मिथ्या है, हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म ही अभी भी हैं, ब्रह्म थे और ब्रह्म रहेंगे। यह बात एकदम संपूर्ण रूप से मिथ्या है। ये आसुर असुर लोगों का विचार है, इस चीज को समझेंगे। तुलसीदास जी वेदों में शास्त्रों में सर्वत्र ऐसा कहा गया, थोड़ा सा विचार करके जिन डूबा पानिया गहरे पानी, जरा गहरे पानी में पैसा ऊपर से मत लीजिए, गहरे पानी में पैसी। इसलिए कह रहे हैं मुक्ति का स्वरूप थोड़ा सा समझा दी। मुक्ति कहते हैं भगवान में मिल जाना, ये मुक्ति नहीं है। भगवान में कोई मिली मिलता है, मिल तो जाएंगे हम लोग, कैसे? भक्ति योग के द्वारा मिलेंगे, किंतु मिलकर के एक हो जाएंगे और हम भी ब्रह्म हो जाएंगे और जगत की सृष्टि करना लगेंगे, ये कभी संभव नहीं है। जीवन एक श्रीकंता, ये माया वश्य है, और वो माया के पति हैं, दोनों कैसे एक हो सकते हैं? ये कभी हो नहीं सकते। इसलिए जीव कभी भी ब्रह्म हो जाएगा, ये असुर लोग ऐसा समझते हैं, कोई भी भक्त लोग या कोई भी ज्ञानी मुक्त महापुरुष ऐसा नहीं सोचता। इसलिए कहते हैं मुक्ति का स्वरूप है, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थित इति मुक्ति, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम। अभी हम लोग माया से ढके हुए हैं, स्थूल और लिंग शरीर से ढके हुए हैं हमारी आत्मा, अभी संसार का कोई पदार्थ अपने को समझते हैं। जब इसलिए मुक्ति हो जाती है और अपने शुद्ध स्वरूप में उपस्थित होकर के भगवान की सेवा को प्राप्त होते हैं, विष्णुअंग्रि लाभा मुक्ति, विष्णु के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करते हैं, तो उसका नाम यथार्थ मुक्ति है। अभी माया से बंधे हुए हैं, जब ये छूट जाता है और शुद्ध रूप में हम अपने प्रभु के सेवा को प्राप्त हो जाते हैं, तब उसको कहते हैं मुक्ति। विष्णु अंगि लाभ, विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति का नाम है यह मुक्ति। कोई कोई दार्शनिक लोग ऐसा विचार करते हैं, आत्यंतक दुख निवृत्ति रे वो मुक्ति, दुखों की निवृत्ति ही मुक्ति है। यह गलत धारणा है। आत्यंतक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक रूप में जब दुख की निवृत्ति होती है तो उसे मुक्ति कहते हैं। कैसे होगा? वो कहते हैं कि जब ब्रह्म हमें मिलकर के हम ब्रह्म हो जाएंगे, अथवा हमको यह अनुभूति होगी कि मैं ब्रह्म है, माया हस्त। अरे पूछो उनसे, जब ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम ही तुम कहते हो तो ये माया कहां से आई? आई कहां से दूसरी की? कौन कह रहा है? कौन सुन रहा है? किसकी मुक्ति होगी? जब यही ब्रह्म है तो उसकी मुक्ति की क्या जरूरत? उसको अज्ञान कहां से आ गया? यदि हम सभी ब्रह्म हैं और थे तो ये कहां से आ गया अज्ञान? ब्रह्म तो अखंड एक है, उसको अज्ञान कहां से आया? इसलिए ये हो नहीं सकता। यदि कहो माया के वजह से, माया क्या है? सत्य भी नहीं है, असत्य नहीं है, अनर्दशनित्वात है। गलत है, तुम मूर्ख। यही बौद्धों का विचार है, इसलिए शंकराचार्य ने भारतवर्ष से बौद्धों को यहां से खदेड़ा। शून्यवाद। इसलिए नहीं, मुक्ति है क्या? अविरल भक्ति, तुलसीदास जी ने कहा है, अविरल भक्ति। और क्या कहा है? अनुपायनी भक्ति देह श्री रंग। अनुपायनी मैंने क्या? अविरल मैंने क्या? अविरल अनुपायनी होता है। अब तय धारावत अभिच्छिन्न गति से हमारी चित्त की सारी वृत्तियां निरंतर भगवान की तरफ में लगी रहे, इसका नाम है अभिच्छिन्न अविरल अनुपायनी, जिसमें कभी कोई भेद छेद न हो, उसको कहते हैं अविरल अनुपायनी। तय धारावत, ऊपर से तेल या मधु गिराओ, तार नहीं टूटे। अविच्छिन्न तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हमारी चित्त की सारी वृत्तियां संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में यदि लग जाएं, इसका नाम है अविरल। और ऐसी भक्ति माने सेवा, इसका नाम है भक्ति। तुलसीदास ने सर्वत्र इसका संपूर्ण रूप से वर्णन किया। ये श्रीमद् भागवत का अनुवाद है। तुलसी की प्रमाण क्या है? हमारे वाल्मीकि जी का आदि रामायण जो है वाल्मीकि रामायण, और ये श्रीमद् भागवत वेद उपनिषद सूति का सब सार उन्होंने सरल सहज भाषा में, किंतु प्रौढ़ भाषा में, गंभीर भाषा में इसको किया। इसको समझना बड़ा भारी कठिन है, इसके लिए शब्दकोश एक अलग है होना चाहिए, नहीं तो इसके शब्दों को लोग नहीं समझ सकते। तुलसीदास को लोग गलत समझते हैं, उनको अद्वैतवादी समझ लेते हैं, बड़े परिचाप का विषय है। इसलिए अब थोड़ी सी ये तो बतलाया, इसको तो मुक्ति कहते हैं। यदि ये कहें कि भाई ब्रह्म में ब्रह्म मिलकर के एक हो गया, एकम एव अद्वितीयम, ऐसा तो लिखा, जैसे कि पानी में पानी, समुद्र में नदियां मिल जाती हैं, एक हो गया, क्या हर्ज है? हम भी वैसे ही प्रभु में मिल करके एक हो गए। भाई यह गलत विचार करते हैं। पानी में पानी मिल करके एक नहीं हो जाता। कोई भी जगत में एक चीज नाम की नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझें। एक क्या है? एक की धारणा क्या है? ए और क, ये तो दो हो गया, अक्षर मिल करके एक हुआ। यदि ओ एन ई कहें तो क्या होगा? तो तीन लेटर हो गए, तो ये कहां रहा? और यदि एक रेखा खींचो ऐसे, तो एक रेखा में लाखों डॉट्स मिल करके एक रेखा बनती है, लाखों डॉट्स हैं, तो एक कहां हुआ? यदि कहो जब पानी में हम पानी मिला देंगे तो एक हो जाएगा, अच्छा ठीक है, देखो तो एक ग्लास पानी ले पूरा भरा हुआ, और उसमें एक ग्लास और पानी पूरा में और थोड़ा सा मिलाओ, क्या होगा?
गिर जाएगा,
मिल जाएगा ना, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, गिर जाएगा। यदि एक होता तो गिरता नहीं। हम उसकी उसको देखते नहीं, पानी में अणु है, लाखों अणु मिलकर के एक बूंद होता है, लाखों बूंद होकर के एक ग्लास पानी हुआ। जब और पानी डालेंगे, यदि एक हो जाता तो गिरता नहीं, किंतु गिरता है, मतलब क्या? हम उसकी क्वांटिटी को देख नहीं पाते। हम देखते हैं कि पानी में पानी मिल हुआ तो गिरा क्यों? इसलिए ब्रह्म में ब्रह्म मिलेगा, मिलेगा ये बात तो ठीक है, किंतु कैसे मिलेगा? जैसे एक क्लास में 100 से लड़के हैं 50, उसमें एक और लड़का मिला तो वो क्लास में चला गया, बाहर से हुआ जो क्लास में चला गया। एक चिड़िया घोंसले में विलीन हो गई, एक चिड़िया जंगल में विलीन हो गई, माने क्या? क्या चिड़िया जा करके जंगल में पेड़ पौधे हो करके उसमें मिल गई, ना कि उसमें चिड़िया रही? समुद्र में एक लोटे को डाल दो, उसमें डूब गया, क्या वो पानी बन गया? लोटे का अस्तित्व रहा। उसी प्रकार से जब जीव भगवान के साथ में मिलता है तो उसका भी अस्तित्व रहता है। और बैकुंठ में जैसे जय विजय सेवा करते हैं, लाखों कोटि जी लोग वहां पर सेवा करते हैं, उस सेवा को करते हैं। इसलिए विशदे तदनंतरम कहा गया, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता, भगवान में मिलकर के एक हो जाता है, यह बात संपूर्ण रूप से गलत। इसलिए यह धारणा जो जीव ब्रह्म हो जाएगा, मिल जाएगा, यह गलत है। और लाखों ब्रह्म हैं, शंकर जी भी ब्रह्म हैं, हनुमान जी भी ब्रह्म हैं, गणेश जी भी ब्रह्म हैं, शंकर दुर्गा जी भी ब्रह्म हैं, और जितने हैं सब ब्रह्म हैं। भाई मैंने कल ये बतलाया, शंकर जी जीव ही सभी ब्रह्म हैं, किंतु परब्रह्म नहीं है, जो चेतन है वो सभी लोग ब्रह्म हैं। हम ब्रह्म के पार्ट ब्रह्म ही है, समुद्र का पानी का एक अंश भी वो पानी ही है, किंतु वो समुद्र नहीं है। ठीक उसी तरह से जी ब्रह्म का अंश है, शंकर जी इससे ऊपर के हैं थोड़ा। कैसे? कल हमने बतलाया ना, ये शंकर जी रामचंद्र जी को देखकर कहते हैं कि हमारे ये आराध्य देव हैं। उन्हीं राम को सेवा करने के लिए रामलीला में शंकर जी स्वयं बने हैं हनुमान जी, हनुमान जी दूसरे नहीं हैं, ऐसा मत समझो। और वही कृष्ण लीला में हनुमान जी बने हैं उनकी सेवा, और कृष्ण लीला में और भी वो गोपीश्वर महादेव वृंदावन में बैठ करके गोपियों जैसी सेवा करते हैं। इसलिए ऐसा मत समझो ये परम्परा है, ये कहीं तुलसीदास जी ने गुरु के रूप में उनको प्रणाम किया है, शंकर जी को, पार्वती जी को। इसलिए वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव में शंभु हैं और भगवान स्वरूप हैं वो, इनका धाम है विद्या से पार वैकुंठ के निकट, इसलिए इनको सदा शिव कहते हैं। ये बद्ध जीव ये कभी नहीं, ब्रह्मा जी कभी कभी बद्ध जीव हो सकता है, शंकर जी नहीं, इसलिए भगवान से अभिन्न है। थोड़ा सा देखिए रामेश्वर जी में रामचंद्र जी ने स्थापना की, रामेश्वर महादेव जाते समय जब शंकर की स्थापना कर ली तो वहां के जितने लोग बोले रामेश्वर रामेश्वर रामस्य ईश्वर है, राम के जो ईश्वर है उनकी जय। देवताओं ने कहा ऐसा नीति मत करो, रामस्य असौ ईश्वर हो, राम और शंकर दोनों ही ईश्वर है। इतने में शंकर की मूर्ति से आवाज आई, ऐसा मत कहो, राम जस्य ईश्वर है, राम ही इनके ईश्वर हैं, वो राम ईश्वर है। इसलिए माधुर्य कोटि में या परमार्थ की दृष्टि से शंकर जी भगवान के राम के सेवक हैं। इस लीला में रामचंद्र जी सेवक होकर के रामेश्वर की स्थापना करके जगत में शिक्षा देते हैं, यहां पर सेवक बन गए हैं राम। और दोनों ईश्वर तत्व होने की वजह से दोनों एक ही तत्व हैं, इसलिए दोनों में मित्रता है। वो तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जी रामचंद्र जी के सीएफपी के प्रभु हैं, मित्र हैं और उपास्य भी। ये सब चीजों को समझना बड़ा ज्यादा कठिन है, तभी ऐसा हो। इसलिए शंकर जी का तत्व भी बहुत अगाध है। भगवान की सेवा करने के जब जब भगवान अवतरित होते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर उनके साथ में अवतरित होते हैं। इसलिए ब्रह्म तो हैं, भगवान विष्णु तत्व भी हैं, किंतु परम ब्रह्म कहने से राम कृष्ण का बोध होता है। इसलिए हम इस चीजों को थोड़ा सा, हमारे श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी श्रीमद् भागवत का एक प्रकरण लेकर के बोलेंगे, इसके बाद में फिर मैं इस चीज के आगे कुछ लीला का वर्णन करते हुए इन चीजों को, तत्वों को सरल बोधगम्य भाषा में आप लोगों के सामने उपस्थित करेंगे। शुभान शुभानंद जी श्रीमद् भागवत का प्रसंग लेकर के बोले जे कैसे नारद जी और व्यास का संग किया। पहले तो आप लोग समझिए, महाराज परीक्षित बहुत बुद्धिमान थे।